اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ سب کو یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا یہ وقت اتنا اچھا گزرے کہ آج ہم سب جو بات یہاں سے لے کر جائیں اس کا اثر ہماری اگلی زندگی تک رہے. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے گناہ. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں گناہوں سے متعلق کیا بات بتائی. ابھی ہم سب اپنے یہاں موجود ہونے پر کہیں الحمدللہ، بولیے اللہ کا شکر ہے، اور اس سے بھرپور فائدہ لیتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ. گناہوں کے 10 اثرات، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک. اور یاد دہانی کی خاطر یہ آج کا لیکچر پی کے ٹرپ 22-23 کا لیکچر ہے، جس میں ہم قرآن کا مطلوب انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم دنیا والوں کو راضی کرتے رہتے ہیں لیکن لوگ ناراض ہی رہتے ہیں. اللہ کی ذات جو ہمارا راستہ دیکھتا ہے، ہمیں اس کی پرواہ کچھ کم ہوتی ہے. آج ہم کیا سیکھیں گے؟ ہم سیکھیں گے کہ جیسے کھانے کا ایک لقمہ کھانے کے بعد اس کا کچھ نہ کچھ اثر آپ کے جسم پر ضرور پڑتا ہے، چکنائی کی صورت میں، میٹھے کی صورت میں، کڑواہٹ کی صورت میں، یا کسی بھی صورت میں اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. اسی طرح کھانا پکانے کے دوران آپ اپنے کھانے میں کیا ڈالتے ہیں، اس کا اثر بھی ضرور پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کھانے میں خوب گرم مسالہ ڈالیں تو اس میں اور گرم مسالے کے بغیر پکے ہوئے کھانے میں فرق نہ ہو. کبھی کبھی یہ فرق زیادہ محسوس ہوتا ہے، کبھی یہ فرق کم محسوس ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے گناہ، یہ لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے دل میں خوف اور گھبراہٹ ہونی چاہیے. اور صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس گناہ کو ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے، تم اس کو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح محسوس کرتے ہو. چھوڑو، سب کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ مومن کی طبیعت کے ساتھ وہ سنکنائز نہیں کرتا. جیسے ابھی ہم انٹرنیٹ کوشش کر رہے تھے کہ یہ ہمیں کنیکٹ ہو جائے، کبھی مشکل آتی کبھی فوراً ہو جاتا ہے. جہاں کا وائی فائی پاس ورڈ آپ کا ٹھیک ہوتا ہے یا وہ سسٹم میں آ جاتا ہے، وہاں فوراً کنیکٹ ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی کرتے بھی رہ جائیں تو کسی ایک ڈیوائس پہ ہو رہا ہوتا ہے تو دوسرے پہ نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح مومن کی طبیعت گناہ کے ساتھ نہیں میچ ہوتی. پہلی بات یاد رکھے. دوسری بات گناہ کے بارے میں یاد رکھیے کہ گناہ انسان کو اللہ سے دور کیے روح کو ایسے زخمی کر دیتے ہیں کہ جس طرح تلوار کا کھایا ہوا زخم جسم کو زخمی کر دیتا ہے. یعنی انسان کا نفس، اس کی روح بہت خطرناک ہے. آپ نے کینسر کا نام سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے، مجھے، آپ کو، ہمارے بھائی بہنوں کو اور ہمارے پیاروں کو، اور جن کو اگر ہے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کا دور کر دے اپنی رحمت سے. لفظ کینسر کے ساتھ دماغ میں جو چیز آتی ہے، میں عموماً اسی کو گناہ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہوں. اور میں سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں اس کا یقین آ جائے کہ گناہ اتنے ڈینجرس ہیں، گناہ اتنے خطرناک ہیں، تو ہم کبھی بھی کیئر فری نہ ہوں. ہم واچ کیئرفلی، لوگ کہتے ہیں کہ ایٹ کیئرفلی، واچ یور اسٹیپس. کبھی سیڑھی کے پاس کھڑے ہو نا تو ان کے پاس لکھا ہوتا ہے کہ آگے سیڑھی آ رہی ہے تو ذرا سے اپنے قدموں کو حساب سے چلائیے گا. بالکل جب ہمیں گناہوں کی شدت محسوس ہو جاتی ہے تو ہم پھونک پھونک کے چلتے ہیں، کیونکہ تلوار کا کھایا ہوا وار جسم کو زخمی کرتا ہے. گناہ انسان کی روح کو زخمی کر دیتے ہیں، اور پھر اس سے جو روح تکلیف سے بلبلا اٹھتی ہے نا، इसको डिप्रेशन कहते हैं, इसको गिल्ट कहते हैं, इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। और इंसान खुद भी तकलीफ में होता है, अजियत में होता है और बेचैनी में मुबतला होता है, और दूसरे जो उसके करीब होते हैं उनको भी उसका असर आता है। और गुना फमे यामल मिसकाला ज़र्रत खैर यरा, जो भी नेकी को करोगे उसको भी देखोगे और गुनाहों को भी देखोगे। इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे कि कैसे गुनाहों को अल्लाह हमें दिखाएगा या हम कैसे देखेंगे। अब होता क्या है कि जब एक इंसान से कोई गुनाह होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सिंपल मिसाल दी थी कि मा हाक बिही फी नफ्सिक, गुनाह क्या है जो तेरे नफ्स में खटका पैदा करे, गिल्ट पैदा करे। फमैयामल मिसकाला शर्रिन यरा, हर शर हर गुनाह बंदे के ऊपर कोई ना कोई असर डालता है। नंबर एक, गुनाह से हमारे जिस्म पे असर आता है, हमारे घर पे असर आता है और हमारे इर्द गिर्द के माहौल पे असर आता है। और गुनाह करने के बाद इसके असरात हमें नज़र आने चाहिए अगर फितरत सलीम है, अगर हम वाकई प्योर फॉर्म में। आप देखिए ना कि जो इंसान बहुत प्योर होता है ना, उसको थोड़ी सी भी चीज़ फौरन चुभने लगती है, उसको महसूस होने लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ किया। बच्चे को देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। बच्चा कोई गलत काम करके आएगा ना, छुपता नहीं है, चुपके से आके बैठ जाता। माँ उसके पोज से, उसकी शक्लो सूरत से, उसकी चीज़ों से समझती है क्या कुछ करके आया, मीसना बना हुआ, डरा हुआ। बल्कि उसके इस तरह से खड़े होने से माँ को उसके ऊपर इतना प्यार आता है, माँ कहती है कि चलो मेरा बच्चा। और ऐसा बच्चा माँ के साथ और ज़्यादा करीब हो जाता है, माँ और ज़्यादा उसके लाड देखने लगती है कि चलो गलत हो गया तो क्या हुआ। कभी बाप को गुस्सा भी आए या घर में नानी दादी किसी को गुस्सा आए कि इसने ये तोड़ दिया ये कर दिया, तो माँ क्या कहती है, कोई बात नहीं, देखो ना शर्मिंदा भी तो है। और अगर कोई गुनाह करे, गलत काम करे और उसके बाद फिर आगे अकड़ने लगे तो फिर गुस्सा ज़्यादा आता है। बिल्कुल इसी तरह पहली बात है कि इंसान उसे गुनाह होगा, 100% होगा, इंसान के खमीर में ही यह है कि उससे गुनाह होगा। लेकिन आदमियत, हज़रत आदम की तरफ निस्बत करके अगर कहूँ, आदमियत क्या है, यानी अगर वो इंसान इंसान ही है, अभी इंसानियत के दर्जे से गिरा नहीं, तो वह शर्मिंदा होगा। आदम अलैहिस्सलाम से भूल तो हुई और आपने दरख्त का फल चख लिया, लेकिन उस भूल के बाद अकड़े नहीं, बल्कि क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये किसने सिखाया, ये गिल्ट किसने बताया, ये अल्लाह ने उनको बताया। इसके बरक्स इबलीस भी गुनाहगार हुआ, सजदे का इनकार, हसद का शिकार हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अकड़ने लगा। क्या कहा, फबीमा अग़वैतनी, रीज़निंग, आपने मुझे अगवा कर दी इसकी वजह से, मैं तो अच्छा था। कभी क्या कहा, ना खैरो मिन हूँ, मैं तो आदम से बहुत अच्छा हूँ। कभी कहते खलकतनी मिन नार व खलकता हूँ मिन तीन, इसको कहते हैं रीजनिंग करना, सफाइयाँ पेश करना उर्दू में। जो बंदा गुना करे और डरे, लिखें ये जुमला, तीन दफ़ा लिखिएगा अपने नोट्स में, गुना करेंगे और डरेंगे तो तर जाएंगे। गुना करके डरना ही असल में मतलूब है, इसके बरक्स नेकी करके भी अकड़ेंगे तो फंस जाएंगे। हम सब अपनी ज़िंदगी में गौर व फिक्र करें, अगर तदब्बुर करें, इस मामले को समझें, तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि जब इंसान से कोई गलत काम हो जाता है, जब कोई गलती उससे हो जाती है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला बल्कि उसके लिए एक खैर का दरवाज़ा खोल देते हैं, और वो क्या है, अन्नदमत तौबा, नदामत तौबा का नाम है। तौबा और नदामत जब मिल जाती है तो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत खैर लाता है। तो आज हम गुनाहों की बात करेंगे कि कैसे ये गुनाह हमें डसते हैं। सांप भी डसेगा तो भी तकलीफ़ होगी, बिच्छू भी डसेगा तो भी तकलीफ़ होगी, लेकिन गुनाह के असरात ने आज इंसानियत को इतना दुखी, इतना ज़ख्मी कर दिया कि गुनाहों की हदूद जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हैं, हम उसको भी पामाल कर रहे हैं, हम उससे भी बाहर जा रहे हैं, और फिर खुद परेशान है। آج کا انسان وہی بات ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس کے مطابق خود بخود اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ جب آج اس موضوع کو زیادہ تھوڑا مزید سمجھیں گے نا، تو آپ ضرور یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ اللہ مجھے ظاہری باطنی ڈھکے چھپے ہر گناہ سے بچا. اور جتنا آپ گناہ کانشیس ہوتے جائیں گے، سن کانشیس ہوتے جائیں گے، اطمینان اور سکون اور اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اس کے بعد آخر میں یا یتہن نفس المطمئنہ ارجی الی ربی کی رادیت مردیہ، یہ کیفیت ہوگی. یہ جو اطمینان اور سکون اور خوشی ہے نا، یہ ملے گا. ایک اور بات سے اس کو سمجھ لیجئے، کپڑے پہنتے ہیں پھر گندے ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ کپڑے پہننا چھوڑ دیں کہ جی یہ تو تھوڑی دیر بعد گندے ہو جانے؟ نہیں، کپڑے پہنے، ایک آدھ دن کے بعد گندے ہو گئے، دھو لیجئے. واشنگ پاؤڈر کیوں بنے؟ صابن، سرف، سوپ کیوں ہے؟ گندے کپڑے اتاریے، مشین میں ڈالیے، واشنگ پاؤڈر ڈالیے، اس کو دھو لیجئے. عام حالت میں کیا ہوتا ہے، ڈے ٹو ڈے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں وہ 10-15 منٹ کی ایک واش ڈالیں تو اس میں صاف ہو جاتے ہیں. اچھا، اب ذرا زیادہ گندے ہو گئے تو گرم پانی ڈال دیں، تھوڑا سا اور بھی زیادہ گندے ہوتے ہیں تو بلیچ ڈال دیجئے، اور کچھ کپڑے تو ایسے ہیں کہ پھر ان کو بھٹی میں پکانا پڑتا ہے. آپ اس چیز سے اپنے دل میں رکھیے کہ گناہ بھی بالکل گند اور میل کی طرح، پرانے پرانے گناہ، سفید کپڑے پہ کھانا گر جائے فوراً جا کے دھو لیجیے، ہو سکتا ہے صاف ہو جائے. ایک گھنٹے دو بعد وہ جب سوکھ جائے گا تو شاید سوپ سے بھی نہ اترے، اور بالآخر پھر 2-3 دن بعد دھوئیں گے تو بلیچ ہوگا، بھٹی میں پکانا پڑے گا. گناہ بھی ایسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے بالکل شروع کے 2-3 رکوع میں کیا کہا کہ انما التوبۃ، اللہ کے ذمے ہے کہ میں فلان لوگوں کی توبہ قبول کروں. کن کی؟ الذین یتوبون من قریب، جو فوراً توبہ کرتے ہیں. گرے ہیں تو فوراً اٹھ جائیے، کوئی چیز خراب ہو گئی تو اس کو فوراً ٹھیک کر لیجئے. کچرا بھی اگر آپ کھانا بنانے کے دوران فوراً سے فوراً اٹھا کے پھینک دے تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ فروٹ کی خوشبو آ رہی ہے، سبزی کے چھلکے ہیں. لیکن اگر 1-2 گھنٹہ چھوڑ دیں ان کو کچن میں، اور اگر 1-2 دن بن میں چھوڑ دیں تو وہی گند بن جاتا ہے. ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی ہے، جتنا گناہ پرانا اتنا اس کو معاف کرانا مشکل. ہر چیز سے گندگی یا میل دور کر کے اس کو صاف ستھرا بنانے کے لیے آج بہت سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. بالکل انسان کے دل اور اس کی زندگی کو گناہوں کے بدترین اثرات سے بچانے کے لیے بھی ہم نے کوشش کرنی ہے، اور آج ہم سب اسی کے لیے بیٹھے. ایٹ لیسٹ 10 دے کر جاؤں گی، حالانکہ اس سے بھی زیادہ ہیں کچھ چیزیں کہ جن کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے محسوس کریں گے کہ اگر میں اپنی گناہوں والی زندگی کو خوشیوں میں، نعمتوں میں، عافیت میں بدلنا چاہتی ہوں تو میں کیا کروں. آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں، اور یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. میں نے اس پہ ایک بک بھی پڑھائی تھی، گناہوں کے اثرات، امام ابن قیم جوزی کی بک ہے اثرات الذنوب، اردو میں بھی ہے، کبھی آپ کو موقع ملے کسی بک سٹور سے خریدیے گا. اس کا نام ہی گناہوں کے اثرات ہے. اور پھر آپ اس کو کھول کر پڑھیں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ یہ غیر مخصوص طریقے سے چیزیں ہمارے اوپر آتی ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلی چیز گناہوں کے اثرات جو کہ ہم دیکھتے ہیں، اس میں جو پہلی چیز سمجھ آتی ہے نا، علم کا شوق ختم ہو جاتا ہے. امام ابن قیم آج سے اتنی پرانی دور کی شخصیت ہے، انہوں نے وہ چیز بھانپ لی جو آج ہمیں دکھ رہی ہے. ہر چیز کا شوق ہے، اچھے اچھے کاموں کا بھی شوق ہے، لیکن وہ فن، نیکیوں کے نام پر بھی جھومنا، جھامنا کے ذکر کے حلقے اور کچھ نہیں تو ایک ایک سپارہ لے کر قرآن پڑھ دیا، لیکن جب کہا جائے کہ علم حاصل کر لیجئے، اس کا ٹائم نہیں ہے، شوق نہیں ہے، دل نہیں لگتا، سونے لگتے ہیں. ابھی آپ نے دعوت لی کہ آپ کو دورہ قرآن آفر کیا جا رہا ہے، بس اب اللہ کی رحمت سے تھوڑا ہی وقت رہ گئے. آپ دیکھیے گا کہ رمضان میں فاتحہ سے ناس تک صرف ایک دفعہ قرآن پاک سے گزر جانا پورے اگلے سال کی غذا ہوتا ہے. لیکن آئیں گے بھی بہت سارے، لیکن بہت سارے رک بھی جائیں گے، نہیں روزہ رکھ کے نکلنا مشکل ہے. नहीं सुबह में खाने का वक्त है, नहीं दोपहर में बच्चे आ जाते हैं, नहीं शाम में इफ्तारी बनानी है। यानी कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। तो आइए देखते हैं कि 10 ways ऑफ गेटिंग रिड ऑफ सिंस, गुनाह दूर करने के 10 तरीके कौन से हैं। सूरत बकरा की आयत है 206। अल्लाह ताला एक किरदार पेश करते हैं आपके मेरे सामने। व इज़ा कील लहू, जब उससे कहा जाता है, किससे कहा जाता है, अना वाले शख्स से, खुद पसंद गुनाहों में डूबा हुआ शख्स, जब उसको कहा जाता है इत्तकिल्ला, अल्लाह से डर जा। यानी कोई शख्स गुनाह कर रहा है और कोई बड़ी हिम्मत और जुरत करके उसको जाकर कहता है अल्लाह से डर जाओ, तो उसका आगे से रिएक्शन क्या है, अखजत खुलिसा बिलिस्मी, स्टबन हो जाता है, अना का शिकार होता है। क्या गुरूर इसको गुनाहों में फंसा देता है। फहस्बहु जहन्नम, बस ऐसे शख्स के लिए जहन्नम काफी है, वलबी सलमिहात, और ये बहुत बुरा ठिकाना है। ये एक वो किरदार है जो आज हमें अपने माशरे में चारों तरफ दिखता है। यही शादी हॉल हो सकता है, किसी खुशी का मौके को सामने ले आइए, कोई अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ा दिन, बच्चे बच्ची की शादी का दिन, अपनी शादी का दिन। हमारे कल्चर में लफ्ज शादी बहुत मारूफ है और बास लोग पूरी जिंदगी शादी करने कराने, अपनी शादी, फिर बच्चों की शादी, फिर उनकी तैयारियों में गुजार देते हैं। अब उस खुशी के मौके पे हक ये था कि खुश हों और सबको खुश करें और खुशियां देने वाले को भी ना भूलें। कोई ऐसा काम करने लग जाए जिससे खुशी देने वाला इतना नाराज हो कि वो खुशी गम में बदल दे, उसी गुना की बर्दाश्त में उस जोड़े के दिल में मोहब्बत ही खत्म हो जाए एक दूसरे की, और दो तीन माह बाद पता चला कि तलाक हो गई। उसी खुशी के मौके पर उस नाफरमानी की वजह से हो सकता है किसी की जान चली जाए। अब कोई आकर उसको कहता है इत्तकिल्ला, अल्लाह के बंदे डर जा अल्लाह से, होना क्या चाहिए, अस्तग़फिरुल्लाह मैं अल्लाह से डर गया। लेकिन खुशी का नशा, दौलत का नशा और कोई और वजूहात ऐसी होती हैं कि उसका रिएक्शन क्या हो जाता है, अना का शिकार होकर आगे से गुस्सा करता है। अखज़त हुल इज़्ज़त बिल इस्म, इन 3 लफ्ज़ों को अगर आप देखें ना, अखज़त हुल इज़्ज़त बिल इस्म, उसको तो पकड़ लेती है इज्जत गुना में। वो कहते हैं ना ये गुना नहीं है, ये मेरी इज्जत का मसला, मेरी नाक कट जाएगी। मसलन यही हॉल है, बीच में इधर एक आड़ा पर्दा लगा दो और इधर औरतों को कर दो, इधर उन मर्दों को कर दो, क्या जरूरत है इतनी बनी ठनी सजी समरी औरतें गैर महरमों में साथ हों। तो आगे से क्या कहता है, नहीं ये हॉल की ब्यूटी खत्म हो जाएगी, गेटअप खराब हो जाएगा। अच्छा आपकी बहू बेटी इतनी प्यारी लग रही है, इतने महंगे आपने कपड़े पहनाए हैं, तो जरा उसको छुपा दें, मर्दों में क्यों बैठी है, उनको उधर बिठा दें, नहीं फिर वो मूवी अच्छी नहीं बनेगी। ये है अखज़त हुल इज़्ज़त बिलिस्म, क्या जिसमें मुझे कुछ एक भी लफ्ज़ बोलने की ज़रूरत है, कतन नहीं। चलते फिरते हम देख रहे हैं, यानी गुरूर या बड़ाई या दौलत का नशा या सदारत का नशा या वजारत का नशा या इन लीड होने का नशा उसको उस गुनाह पे जमा देता। अल्लाह ने कहा फहस को जानना, ठीक है जो उसने किया वो किया। तो अभी एक बात समझ ली कि बास लोग डंके की चोट पे गुनाह करते हैं, दिखा दिखा के करते हैं, बता बता के करते हैं, अनाउंस करके करते हैं, प्लानर्स के साथ करते हैं, और उनके गुनाह आप कह लीजिए प्री प्लान्ड होते हैं। वो पहले से बुकिंग कराकर अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे में कई महीनों की तैयारियां और रिहर्सल के बाद वो गुनाह करते हैं, कह लीजिए सोचा समझा मंसूबा होता है। लेकिन आप चले अल्लाह ना करे गिर गए, पाँव फिसल गया, मुमकिन है, अल्लाह सबको बचाए मुझे भी और आपको भी। लेकिन अगर कुछ जान के यहाँ तेल गिराए, स्लिपरी करे ताकि आपका पाँव फिसले, तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको। बिल्कुल जो गुनाह हो जाते हैं, मैंने तो पहले ही कह दिया गुनाह होंगे हो जाएंगे, लेकिन बंदा मोमिन गुनाह पे जमता नहीं है। सवाल लिखिए कि गुना पर माइल करता कौन है, हु फोर्स अस या हु मोटिवेट्स अस टू डू सिंस। दो नाम याद रखिए, मुझे पता है आप सबके जहन में एक नाम आ गया होगा, शैतान बेचारा। देखिए खाली शैतान कुछ नहीं कर सकता, सबसे पहले हमारा नफ्स, क्योंकि सूरत यूसुफ 13वें पारे की पहली आयत, वमा उबर्रियु नफ्सी इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी, मैं अपने नफ्स को बेगुनाह करार नहीं देता, क्योंकि नफ्स तो हमेशा गुनाह का ही या बुराई की तरफ ही हुक्म देता है। तो सबसे पहला मोटिवेटर हमारा नफ्स, और ये नफ्स अपनी तबीयत के एतबार से जबिलतन गुनाह को पसंद करता है। इसमें हैवानियत भी है, शैतनियत भी है, और मलूकियत भी है, मलकियत कह लीजिए चले। यानी नफ्स में हैवानी खूबियां भी हैं, शैतानी खूबियां भी हैं, और इसमें फरिश्तों वाली खूबियां भी हैं। इस पे भी चंद दिन पहले एक लेक्चर हुआ, आप ज़रूर सुनिएगा इसी सीरीज में पाकिस्तान के ट्रिप की, जिसका नाम था इस्लाह नफ्स के चार रसूल। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक था। आप लोगों को जब मौका मिले यूट्यूब से नूरुल कुरान टीवी खोलिए, NURULQURAN TV, ये एक वर्ड है, और लफ्ज़ नूर में डबल ओ नहीं बल्कि यू है। इसी को माई नूरुल कुरान कर देंगे तो फेसबुक का हमारा चैनल है, यूट्यूब का मैंने बता दिया, वेबसाइट भी है, ऐप भी मौजूद है इन्हीं स्पेलिंग के साथ नूरुल कुरान, सुन के देख लीजिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ बस मैं आपको 10 पॉइंट्स की सीरीज तक ले जाने के लिए ये चंद बातें कर रही हूँ, ताकि आप पहले गुनाह की शिद्दत तो समझिए। हम तो गले से लगाए रखते हैं अपने गुनाहों को, और सीने से लगाए हुए गुनाह, हमें तो प्यारे ही पड़े हैं अपने गुनाह। और गुनाह क्या है? गुनाह की तरफ माइल करने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले नफ्स, फिर शैतान। नफ्स सीधा हो जाए, नफ्स लवामा की पुकार पे लब्बैक कह दे, तो वो नफ्स मुतमईना बन जाएगा, फिर शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सोचिए कि नफ्स और शैतान दो दोस्त हैं, और इंसान अपने दोस्तों की सोहबत पे आ जाता है। जब आपका नफ्स अच्छा बच्चा बन गया ना, तो वो आपके शैतान को भी अच्छा कर लेगा। नबी सल्लम की हदीस याद कीजिए कि आपने फरमाया कि हर इंसान पर अल्लाह ने एक फरिश्ते को और एक शैतान को मुकर्रर किया हुआ है। फरिश्ता नेकी का हुक्म देता, शैतान उसको गुनाह का हुक्म देता। एक तो फौरन साहबा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी आपके ऊपर भी शैतान है? देखिए साहबा का अकीदा कितना क्लियर था नबी सल्लम के बारे में, खासतौर पर अल्लाह के नबी आपको भी? कहा मुझे भी, लेकिन मेरा शैतान मुसलमान हो चुका है। हदीस सुनी हुई है? आइए जरा आज मैं इसका तरीका भी सिखा दूं आपको। नफ्स और शैतान लिखिए, दो चीजें, दो दोस्त हैं। नफ्स को आप जितना पाक करते जाएंगे, गुनाहों से उसको दूर करते जाएंगे, वो स्ट्रांग होता जाएगा। और ये कब स्ट्रांग होगा? जब आप उस फरिश्ते की कॉल पे लब्बैक कहेंगे। मैं हमेशा मिसाल देती हूँ, और ये मिसाल आज जाकर आप अपने 10-11 साल की उम्र के बच्चों को साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिनको नमाज मुश्किल लगती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब रात को इंसान सोता है, सोने लगता है कहले, तो उसके बालों को, ये गुद्दी यहाँ जहाँ पीछे चुटिया बांधते हैं ना, गुद्दी, गुद्दी के बालों को पकड़कर शैतान 3 गिरहें लगाता है, और गिरहें लगाते हुए कुछ पढ़ता है। अमूमन लोग गिरहें लगाते हुए पढ़ते हैं ना, तभी तो कम इन शर्र नफ्फासात फिल उक़द। और वो शैतान क्या गिरहें लगाते हुए पढ़ता है? सोजा रात बड़ी लंबी है, सोजा रात बड़ी लंबी है, और इंसान गहरी तान के सो जाता है। जब फजर का वक्त करीब होता है ना, तो अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया हुआ है, वो उसको उठाता है, उठो उठो। और अगर अजान कान में पड़ गई, असला तो खैर मिन नौम, अब बंदा उठ गया, फरिश्ते ने उसको उठाया, वो उठ गया, वजू किया, एक गिरा खुल गई, नमाज अदा की, दूसरी गिरा उतर गई, जिक्र अस्कार कर लिया, तीसरी गिरा भी खुल गई। अब ये बंदा सारा दिन उस शैतान के शिकंजे से आजाद और दिल खुश। आप खुद फील करें ना, जिस दिन फजर की नमाज अच्छी सी पढ़ लें, दिन कितना अच्छा गुजरता। अब ये तो है आइडियल शख्स। वो शैतान जिसने रातों को गिरें लगाई थी, वो तो दुखी हो गया, वो इस फरिश्ते से नाराज लड़ाई शुरू कर देगा। मैं उसको सुला रहा था, तुमने क्यों उठा दिया, वो तो मेरा कारिंदा था, तुमने क्या कर दिया, ये वो। उन दोनों के अंदर में जंग है, आपके मेरे जिस्म के अंदर हर वक्त ये लड़ाई चल रही है। फरिश्ता और शैतान हमारे जिस्म के अंदर हर वक्त इसी में, इन्हीं के मुकाबले को जिहाद बिन नफ्स कहते हैं। अच्छा, आप उठ गए फजर की नमाज पे, ये तीनों काम भी हो गए, आपका फरिश्ता आपसे खुश और शैतान आपसे नाराज। जब फरिश्ता खुश होता है ना, तो नफ्स को सपोर्ट मिलती है। वो जो नफ्स अम्मारा था ना, वो बेचारा पिचकने लगता है, मक्खी की तरह छोटा छोटा होने लगता है, और आपका नफ्स लवामा स्ट्रांग हो रहा है। लवामा मलामत से, जो बुराई पे रोकता है, ये क्या किया, उठो, शर्म नहीं आती, ये नहीं वो, अब वो स्ट्रांग हो गया। ये कैफियत आपके अंदर में सुकून भरती है। हमारे जिस्म पर हर वक्त चार फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे हैं, चार चीजें हैं, दो अंदर की, नफ्स और शैतान, फरिश्ता और शैतान कह लीजिए, और दो बाहर हैं, एक हिजबुल्ला और एक हिजबु शैतान। सूरत हशर में अल्लाह ने इनका तذکرہ किया, यानी अल्लाह की तरफ बुलाने वाले लोग, जैसे आप जैसे लोग जो दर्स रखवाते हैं, जो कुरान की क्लासेस में आते हैं, बुलाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मस्जिदों में आने वाले इमाम मुअज्जिन, जो लोगों को अच्छी तरफ बुला रहे होते हैं। लेकिन दूसरा एक गिरोह भी है बाहर, हिजबु शैतान, जो हमेशा इंसान को गलत चीज़ों पर लगाते हैं। बाहर की दुनिया में इन दोनों में हर वक्त जंग हो रही है, आप खुद ही देखते हैं। नेक काम करने वाले अमूमन गलत काम करने वालों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, और गलत काम करने वाले लफ्ज़ मौलवी को मजाक बनाते हैं। अंदर की जंग फरिश्ते और शैतान की, आप अच्छा काम करेंगे तो फरिश्ता आपसे खुश, बुरा करेंगे तो शैतान आपसे खुश। सवाल ये है कि ये फरिश्ते को स्ट्रांग करने का तरीका क्या है? बाहर की दुनिया में आप किनके साथ रहते हैं? जो लोग बाहर की दुनिया में उन लोगों के साथ रहते हैं जिनको नेकियों का शौक है, तो उसकी वजह से अंदर से फरिश्ते को हेल्प मिल जाती है। इसके बरक्स आप समझ ही गए होंगे, बाहर कंपनी बुरी, बुरे लोग, ईमान से कमज़ोर, शैतान को और दूसरी तरफ ले जाने वाले लोग, उसकी वजह से इंसान फिर उनकी तरफ पड़ जाता है। नतीजा क्या निकलता है आप देखते हैं, शैतान मुतमईन है। यहाँ आप वो हदीस याद कर लें कि आपने फरमाया कि उमर फारूक जिस गली से गुजरते हैं, शैतान वो रास्ता बदल देता है। सुना वजह, कोई अल्लाह ताला ने उमर को कोई नए तरीके से बनाया था? मुराद क्या है, उमर ने अपने नफ्स को इतना टेम करके, इतना स्ट्रांग कर लिया हुआ था कि शैतान कहता भाई मैं तुमसे सलाम दुआ नहीं कर सकता। और अल्लाह माफ करे, आज कई ऐसे होंगे कि दूसरी गली छोड़ के शैतान सलाम करने आता होगा। तो अगर आपने फजर की नमाज नहीं पढ़ी वक्त पे, जब उठे ही नहीं, तो नमाज कहाँ, तो वजू किधर, तो जिक्र अस्कार किधर, और सोते ही रह गए। और ख़ास तौर पे आप में से कुछ मोहब्बत करने वाली माएँ बच्चों को उठाएं ही ना, कि नहीं, इन्होंने सुबह 8 बजे उठ के स्कूल जाना है, और सारा दिन बड़ा लंबा है, और 6 बजे ही उठ गए तो क्या है, तो होगा क्या, सोएगा वो ज़्यादा, लेकिन दिल को इत्मीनान कम, बेचैन, सारा दिन दिल बंद होगा। वो तीन गिरे हैं ना, वो शिकंजे में है वो बंदा। आपने अगर कभी खुदा ना खास्ता फजर ना पढ़ी हो, तो वो दिन सारा बुरा गुजरेगा, और दिल बोझल और हाथ मसरूफ, ये तीन अलामतें लिख लें। जब आप शैतान के कहने पे, उसके थबोकड़ने पे, या उसके थप थपाने पे सोए रहते हैं, तो शैतान आपसे खुश, और जब शैतान खुश होगा, तो वो दिल में गम डालेगा, बोझ डालेगा।